भारत सरकार अधिनियम 1919 आगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम प्रस्तावना। इस अधिनियम की प्रस्तावना में मूल तत्व निर्धारित किए गए थे जिसके अनुसार भारत में सुधार लाए जाने थे और जो लगभग वही थे जो 20 अगस्त 1917 की घोषणा में कहे गए थे। इसके अनुसार प्रथम भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बने रहना था, दूसरा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी थी, तीसरा जो कि केवल सेना सेना रूप में ही कार्यान्वित की जा सकती थी, चौथा उत्तरदायी सरकार प्राप्त करने के लिए दो बातें आवश्यक थी, प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों का संपर्क अधिकाधिक हो और स्वशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, पांचवां प्रांत में स्वायत्त संस्थाओं के विकास के साथ साथ ये आवश्यक है कि प्रांतों को प्रांतीय विषय में भारत सरकार के स्वतंत्रता के अधिनियम तम माता दे दी जाए जो कि उसके अपने उत्तरदायित्व को निभाने के पूर्णतः अनुरूप हो। इस प्रस्तावना का मूल यह था कि घोषणा मॉन्टेग्यू ने की थी उसे वैधानिक रूप दे दिया गया। अंग्रेज सरकार ने भारत पर नियंत्रण को पुनः स्पष्ट कर दिया गया और यह भी स्पष्ट हो गया कि भविष्य में किस दिशा में कैसे जाना है। हस्तांतरण नियम, चूंकि अधिनियम का उद्देश्य प्रांतों में आंशिक रूप में उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था, अतः यह आवश्यक था कि केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के कार्यक्षेत्र निश्चित किए जाएं और केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों की सूचियां तैयार की जाएं। केंद्रीय सूची में सम्मिलित विषयों के प्रशासन पर स्व परिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था, इनमें वे सभी विषय सम्मिलित थे जो राष्ट्रीय महत्व के थे अथवा एक से अधिक प्रांतों से संबंध रखते थे, उदाहरण के लिए विदेशी मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, देशी रियासतों के डाक तथा तार विभाग, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवान तथा फौजदारी कानून तथा कार्यप्रणाली इत्यादि, ये सभी मामले केंद्रीय सूची में थे, परंतु जो स्थानीय महत्व के थे जैसे कि स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा प्रशासन, भूमि व प्रशासन, जल संभरण, अकाल सहायता, शांति तथा व्यवस्था, कृषि तथा सिंचाई इत्यादि प्रांतीय सूची में थे, जो विषय स्पष्ट रूप से हस्तांतरित नहीं किए गए थे वे सभी केंद्रीय सूची में माने गए। अधिनियम की मुख्य धाराएं, ए, गृह सरकार में परिवर्तन। 1793 से भारत राज्य सचिव को भारतीय राजस्व वेतन मिलता था, यह अंग्रेजी राजस्व मिलना था, इस प्रकार 1793 में क्या हुआ, अन्याय ठीक कर दिया गया। अब उत्तरदायी सरकार की नई धारणा जो स्वीकार की गई थी उसके अनुसार इंग्लैंड में भारत परिषद के अधिकारों को कुछ क्षति पहुंची, इसके सदस्यों की संख्या 12 से घटाकर 8 कर दी गई, इसका काम अब केवल मंत्रालय देना रह गया, राज्य सचिव को भी इससे मंत्रणा करना था, वित्तीय विषयों तथा राजकीय सेवाओं के प्रश्नों में इनके सुझाव स्वीकार करना अनिवार्य नहीं था। इस अधिनियम द्वारा भारत के लिए एक उच्च आयुक्त हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान था, इसे भारत सरकार को ही नियुक्त करना था, भारतीय राजस्व से वेतन भी देना था। इसने पदाधिकारी स्व परिषद गवर्नर जनरल के एक कार्यकर्ता बन गया, उसे अब संग्रहकार विभाग तथा भारतीय विद्यार्थी विभाग इत्यादि का भी कार्यभाग बना दिया गया। प्रांतों में हस्तांतरित विषयों में भारतीय राज्य सचिव का नियंत्रण कम कर दिया गया, यद्यपि केंद्र पर उसका नियंत्रण पूर्ववत रहा। दूसरा, केंद्रीय कार्यकारिणी में परिवर्तन। यद्यपि केंद्र में उत्तरदायी सरकार लाने का कोई प्रयत्न नहीं कह गया, परंतु भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 4 सदस्यों में अब 3 भारतीय नियुक्त की गई, यद्यपि उन्हें विधि, विद्या, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग जैसे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। मुख्य कार्यकारी शक्ति अभी भी गवर्नर जनरल के पास ही रही, जो भारत में क्राउन का प्रतिनिधि था और जो सदैव भारत राज्य सचिव के पद व्यवहार करता रहता था। उसे अपने कार्यकारिणी परिषदों पर पूर्ण नियंत्रण था और संपूर्ण देश पर अधिकाधिक अधिकार प्राप्त थे। भारतीय जनता की इच्छाओं की गवर्नर जनरल की नियुक्तियों, शक्तियों और उसके कार्यों के विषय में पूर्णतया देखी गई। सी, केंद्रीय विधानमंडल में परिवर्तन। एक सदनीय साम्राज्य, एक विधान परिषद के स्थान पर इस एक्ट के अनुसार केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था की गई, पहला सदन राज्य परिषद तथा दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा बनाया गया। राज्य परिषद में जो ऊपरी सदन था 7 सदस्य होते थे, जिनमें से 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता थे और शेष 34 निर्वाचित होते थे। इस प्रकार यह निर्वाचित सदस्यों की बहुसंख्या हो गई, 26 मनोनीत सदस्यों में से 19 पदाधिकारी तथा 7 अशासकीय होते थे, 34 निर्वाचित सदस्यों में से 20 साधारण चुनाव क्षेत्र से चुने जाते थे, 10 मुसलमानों द्वारा, 3 यूरोपीय और 1 सिख द्वारा। इस राज्य परिषद का प्रतिवर्ष आंशिक रूप से नवीनीकरण होता था, यद्यपि वे सदस्य प्राय 5 वर्ष के लिए चुने जाते थे। इसका प्रावधान वायसराय द्वारा नियुक्त किया जाता था, सदस्यों को माननीय की उपाधि दी जाती थी, स्त्रियां सदस्यता से वंचित रह गई, गवर्नर जनरल सदन को बुला स्थगित तथा भंग कर सकता था, मताधिकार अत्यंत सीमित था, केवल वही लोग जिनकी आय 10,000 रुपये वार्षिक थी अथवा जो न्यूनतम 750 रुपये प्रतिवर्ष भूमि कर के रूप में देते थे मतदाता बनने का अधिकार प्राप्त कर सकते थे। दूसरे प्रत्याशी को किसी विधानमंडल का अनुभव होना चाहिए था अथवा वह किसी विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त यह उपाधिकारी होना आवश्यक था। यह मताधिकार कितना सीमित था यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि 1920 में केवल भारत की 24 करोड़ जनसंख्या में से केवल 17,364 व्यक्ति ही यह मताधिकार प्राप्त कर सके। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा कहते थे, इनमें 145 सदस्य, जिनमें से 104 निर्वाचित था, 41 मनोनीत होते थे, मनोनीत में 26 शासकीय था, 15 अशासकीय होते थे। 104 निर्वाचित सदस्यों में 52 साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में से 32 सांप्रदायिक क्षेत्रों यानी कि 30 मुसलमान और 2 सिख और 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्र, 7 भूमिपति, जिसमें 7 भूमिपति, 9 यूरोपियन और 4 भारतीय व्यापार समुदाय द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। सभा का कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित किया गया, परंतु वह गवर्नर जनरल की इच्छानुसार बढ़ाया भी जा सकता था। यह स्मरण रहे कि अंतिम विधानसभा जो 1936 में चुने गए थे 10 वर्षों के पश्चात भंग की गई। मताधिकार यहाँ भी बहुत सीमित था, परंतु राज्य परिषद की तुलना में अधिक विस्तृत था, अर्थात मतदाता 15 रुपये मासिक मकान का किराया देता हो या 15 रुपये वार्षिक नगर पालिका को कर देता हो अथवा न्यूनतम 2,000 रुपये वार्षिक आय कर देता हो अथवा 50 रुपये